लाउडेटर यीशुस क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वेटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको ईश पिता का स्नेहिल आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम विश्व में भ्रातृत्व की स्थापना के लिए प्रार्थना करते हैं। ईश्वर, हमें अन्य धर्मों के भाइयों और बहनों के साथ पूर्ण मैत्री और साहचर्य में जीने की कृपा प्रदान करें। सभी के लिए हम प्रार्थना करें तथा सबके प्रति उदार रहें। आमीन।
नमस्कार श्रोताओं, आज के प्रसारण विषय हैं कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन, भक्ति गीत एवं समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता हैं फादर संजय दिलीप एक्का और सिस्टर उषा मनोरमा तिर्की। श्रोताओं, हमने अपने मंगलवारीय कार्यक्रम कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरितिक पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती हम सभी भाई बहने हैं की चर्चा कर रहे हैं। यह विश्व प्रेरितिक पत्र हमें भ्रातृत्व और सामाजिक बंधुत्व में प्रवेश करने का एक निमंत्रण देता है। संत पापा की चाह यही है कि हम मानव सम्मान को पहचान प्रदान करते हुए वैश्विक भ्रातृत्व के लिए एक सार्वभौमिक आकांक्षा को पुनर्जन्म दें। हम सभी नर नारी स्वरूप भ्रातृत्व के भाव उत्पन्न कर सकते हैं। श्रोताओं, हमने फ्रतेल्ली तुत्ती के दूसरे अध्याय राह में एक अपरिचित भले समारी के दृष्टांत की चर्चा कर रहे हैं। अपने पिछले प्रसारण में हमने कहानी के विभिन्न पात्रों की चर्चा की जो हमें अपने जीवन के किसी न किसी परिस्थिति पर उन नायकों से मेल कराता है। हम उस घायल व्यक्ति की ओर देखें और चिंतन करें। बहुत बार हम अपने को उसी तरह पाते हैं, बुरी तरह घायल और राह में छोड़ दिए गए हों। हम अपने जीवन में हताश और निराश अनुभव करते हैं क्योंकि हमारे संस्थानों को छोड़ दिया गया है और उनमें संसाधनों की कमी है, या वे केवल अंदर और बाहर के ही कुछ लोगों के हितों की पूर्ति करते हैं। वास्तव में वैश्विक समाज बहुधा अपने निगाहों को आकर्षक रूप में बनाए रखता है। राजनीतिक रूप से सही या वैचारिक रूप से फैशनेबल होने की आड़ में हम उन लोगों को देखते हैं जो छूने के बिना अपने में पीड़ित हैं। हम उनके बारे में सजीव तस्वीरें दिखलाते हैं, यहाँ तक कि उनके बारे में व्यंजना और स्पष्ट सहिष्णुता के साथ बातें करते हैं। संत पापा कहते हैं कि हर दिन हमें एक नया अवसर प्रदान करता है। हम उन लोगों से सारी चीजों की आशा न रखें जो हमारा संचालन करते हैं, क्योंकि यह हमारा बचकाना होगा। हम में वे संभावनाएं हैं जिसके आधार पर हम सह उत्तरदायी होते हुए चीजों का निर्माण कर सकते हैं जो नई स्थिति को जन्म देती और हमारे जीवन में परिवर्तन लाती है। आइए हम सब मिलकर सक्रिय रूप से अपने बदहाल समाज को नवीन बनने में सहयोग करें। आज हमारे लिए ईश्वर प्रदत्त अपनी भ्रातृत्वमय सोच को व्यक्त करने हेतु एक बड़ा अवसर मिला है। अच्छा समारी बनने के लिए जो मुसीबत में पड़े लोगों की सहायता करता है, न कि एक दूसरे के बीच अधिक घृणा और क्रोध को प्रसारित करना। दृष्टांत में उस व्यक्ति के समय हमें केवल अपने में एक शुद्ध और साधारण चाह रखने वाले एक व्यक्ति, एक समुदाय होने की जरूरत है, निरंतर एक अथक प्रयास करने की जिससे हम गिरे हुए लोगों को उठा सकें। हम बहुत बार हिंसात्मक मानसिकता, अंधी महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाते हैं जो अविश्वास और झूठों को प्रसारित करता है। दूसरे हैं जो राजनीतिक या अर्थव्यवस्था को अपने लिए शक्तिमय साधन के रूप में उपयोग करते हैं। हम अपनी ओर से अच्छी चीजों को करने की कोशिश करें और अपने को दूसरों की सेवा में संलग्न करें। हम सभी नीचे से शुरू कर परत दर परत, ठोस और स्थानीय स्तरों पर कार्य करते हुए अपने को सुदूर अपने देशों और विश्व में विस्तृत कर सकते हैं। उस भलाई और सेवा के कार्यों को जिसे भले समारी ने घायल व्यक्ति के लिए किया, आइए हम दूसरों की खोज करते हुए विश्व से भयहीन या अपनी अयोग्यता का अनुभव किए बिना दूसरों का आलिंगन करें, चाहे वे जैसे भी हों, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम ईश्वर के द्वारा अपने हृदय में रोपे गए अच्छाइयों की खोज कर पाएंगे। कठिनाइयां जो हमारे लिए मुश्किल प्रतीत होती हैं, हमारे विकास हेतु अवसरों को लेकर आती हैं। हम बहाना करते हुए उन्हें अपने से दूर ना करें, क्योंकि ऐसा करने के द्वारा हम एक परिचित मात्र बनकर रह जाते हैं। यद्यपि हम इसे अकेले व्यक्तिगत रूप में ना करें, भले सामारी ने एक सराय में उस व्यक्ति को पाया जो घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा कर सकता था, वैसे ही हम सभी एक छोटे व्यक्तिगत समुदाय की अपेक्षा एक परिवार के रूप में संयुक्त रूप से मजबूती में जुड़े रहने हेतु बुलाए गए हैं, क्योंकि एक भाग की अपेक्षा पूरा अपने में अच्छा है, वहीं पूरा भाग अलग अलग छोटे हिस्सों से बेहतर है। हम अपने बीच में व्याप्त छोटे छोटे व्यर्थ के लड़ाई झगड़ों और निरंतर खींचा तानी को अपने से दूर करें। हम अपने में दुखित और विलाप करने के बजाय अपनी गलतियों, अपनी उदासीनताओं और झूठों को स्वीकार करें। पुनर्निर्माण और मेल मिलाप हमें भय से मुक्त करते हुए नया जीवन प्रदान करेगा।
नया जीवन, मधुर जीवन हम पाए हैं प्रभु के आशीर्वचन से, प्रभु के आशीर्वचन से। नया जीवन, मधुर जीवन हम पाए हैं प्रभु के आशीर्वचन से, प्रभु के आशीर्वचन।
समारी जो राह में व्यक्ति की सहायता हेतु रुका, उसने अपनी पहचान और कृतज्ञता की आशा नहीं की और वह अपने जीवन में आगे बढ़ गया। जरूरतमंद व्यक्ति की सेवा करना उसे ईश्वर के सामने और अपने में एक बड़ी संतुष्टि प्रदान करता है। इसे वह अपने में एक उत्तरदायित्व स्वरूप लेता है। घायलों के प्रति हम सबों का एक उत्तरदायित्व है, वे जो हमारे हैं और वे लोग जो इस दुनिया के अंग हैं। आइए हम उन जरूरत में पड़े नर और नारी, युवा और बुजुर्गों की सहायता करें। उसी सेवा भावना और निकटता से प्रेरित होकर, जिस भ्रातृत्वमय भावना से प्रेरित होकर भले सामारी ने राह में घायल व्यक्ति की सेवा शुश्रूषा की। श्रोताओ, मेरा पड़ोसी कौन है? यीशु ने इस सवाल के उत्तर में भले सामारी का दृष्टांत सुनाया। यीशु के समय में पड़ोसी शब्द का तात्पर्य साधारणतः अपने निकटतम रहने वाले व्यक्ति से था। इसका तात्पर्य यही था कि हमें सर्वप्रथम उन व्यक्तियों की मदद करनी है जो हमारे समुदाय और जाति के हैं। उस समय के कुछ यहूदी समारियों को हे की दृष्टि से देखते थे, उन्हें अशुद्ध समझा जाता था। वे उन लोगों की गिनती में आते थे जिनकी सहायता नहीं की जा सकती थी। यीशु स्वयं एक यहूदी थे जो पूरी तरह से उस मनोभावना को बदल देते हैं। वे हमसे यह नहीं कहते हैं कि पड़ोसी के रूप में कौन हमारे करीब है, वरन हम सभी दूसरों के लिए पड़ोसी बनने हेतु बुलाए गए हैं। यीशु हमें अपने को उन लोगों के लिए उपलब्ध करने को कहते हैं जिन्हें हमारी सेवा की जरूरत है, चाहे वे हमारे समाज से ताल्लुकात रखते हों या नहीं। इस संदर्भ में वह सामारी उस घायल यहूदी का एक पड़ोसी बनता है। उसकी सेवा करते हुए वह सांस्कृतिक और ऐतिहासिक सीमाओं के परे जाता है। अपने दृष्टांत के अंत में यीशु कहते हैं, जाओ और तुम भी ऐसा ही करो। दूसरे शब्दों में दुख दर्द की परिस्थिति में वे हमें अपनी विभिन्नताओं को अपने से दूर करने की चुनौती प्रदान करते हैं। वे हमें बिना सवाल जवाब किए दूसरों के लिए अपने को देने की मांग करते हैं। हमें ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मेरे पड़ोसी हैं जिन्हें मुझे सहायता करने की जरूरत है, वरन मुझे स्वयं दूसरों के लिए एक पड़ोसी बनने की जरूरत है। श्रोताओ, हमने अपने मंगलवारीय प्रसारण कलिसियाई दस्तावेज एक अध्ययन के अंतर्गत संत पापा फ्रांसिस के विश्व प्रेरित पत्र फ्रतेल्ली तुत्ती पर एक चर्चा सुनी। हम इस पर अपनी चर्चा आगे भी जारी रखेंगे।
नया जीवन, पथ जीवन हम पाए हैं प्रभु के आशीर्वचन से। प्रभु के आशीर्वचन से नया जीवन, मधुर जीवन हम पाए हैं प्रभु के आशीर्वचन से। प्रभु के आशीर्वचन से नया जीवन, मधुर जीवन हम पाए हैं।
आप वैटिका रेडियो से हिंदी प्रसारण सुन रहे हैं। लीजिए प्रस्तुत है समाचार। संत पापा फ्रांसिस ने विश्व रोगी दिवस के लिए एक संदेश प्रकाशित किया है, जहां उन्होंने कोरोना वायरस महामारी से पीड़ित लोगों की याद करते हुए सभी लोगों को, खासकर गरीबी और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले लोगों के प्रति अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त किया है एवं उन्हें कलीसिया के प्रति देखभाल का आश्वासन दिया है। 11 फरवरी को 29वां विश्व रोगी दिवस मनाया जाएगा। उसी दिन लूद की माता मरियम का पर्व मनाया जाता है, जो बीमार लोगों एवं परिवारों और समुदायों में उनकी देखभाल करने वालों की विशेष याद करने का दिन है। संत पापा ने कहा कि हम उन लोगों की विशेष याद करते हैं जिन्होंने कोरोना वायरस महामारी के कारण कष्ट सहा है और अब भी सह रहे हैं। मैं सभी को अपना आध्यात्मिक सामीप्य व्यक्त करता तथा कलीसिया की प्रेमी देखभाल का आश्वासन देता हूँ। विश्व रोगी दिवस की विषय वस्तु है, तुम लोग गुरुवर कहलाना स्वीकार ना करो, क्योंकि तुम्हारा एक ही गुरु है और तुम सबके सब भाई हो। इस विषय वस्तु को सुसमाचार से लिया गया है, जहां यीशु फरीसियों को उनके ढोंगीपन के लिए फटकारते हैं, जो शिक्षा देते किंतु खुद उसका पालन नहीं करते हैं। संत पापा ने कहा कि जब हमारा विश्वास शब्द मात्र रह जाता, दूसरों के जीवन और जरूरतों से कोई सरोकार नहीं रखता, तब धर्मसार जिसको हम अभिव्यक्त करते हैं हमारे जीवन के लिए असंगत साबित होता है। यही कारण है कि यीशु कठोर शब्दों में आत्म पूजा करने वालों को फटकारते हैं। पाखंड और आत्म पूजा का सामना करने के लिए यीशु हमें रुकने और सुनने, दूसरों के साथ सीधे एवं व्यक्तिगत संबंध स्थापित करने, उनके प्रति सहानुभूति रखने और उनकी पीड़ा को अपनी पीड़ा समझने की सलाह देते हैं। विश्व रोगी दिवस की स्थापना 13 मई 1992 को संत पापा जॉन पॉल द्वितीय ने की थी। संत पापा फ्रांसिस ने गौर किया कि बीमारी हमें अपनी दुर्बलता एवं दूसरों की आवश्यकता का एहसास कराता है। यह जीवन के अर्थ पर सवाल उठाता है, जिसको हम विश्वास में ईश्वर के पास लाते हैं कि अपने जीवन में एक नया एवं गहरा मार्गदर्शन पा सकें। इस संबंध में संत पापा ने बाइबल के जोब का उदाहरण दिया, जो अपने दुर्भाग्यपूर्ण समय में अपनी पत्नी एवं मित्रों से त्याग दिया गया था, फिर भी पाखंड का बहिष्कार किया एवं ईश्वर तथा दूसरों के साथ ईमानदारी का रास्ता चुना। प्रभु ने जोब की पुकार सुनी और पुष्ट किया कि उनकी पीड़ा कोई सजा नहीं थी, ना ही ईश्वर से अलग होने की स्थिति। और न ही ईश्वर की उदासीनता का चिन्ह। संत पापा ने कहा कि बीमारी के अनेक चेहरे हैं। वे लोग भी बीमार हैं जो परित्यक्त हैं, जो बहिष्कार एवं सामाजिक अन्याय के शिकार हैं तथा अपने मौलिक अधिकारों से वंचित हैं। अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी के कैपिटल हिल में पिछले सप्ताह हुए हमले के बाद कलीसियाओं की विश्व परिषद ने हिंसा की निंदा की है और अमेरिका की कलीसियाओं का आह्वान किया है कि वे नबी के रूप में शांति का मार्ग प्रशस्त करें। कलीसियाओं की विश्व परिषद ने अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन में ट्रंप समर्थकों द्वारा किए गए हमले के बाद राजनीतिक उथल पुथल के बीच अमेरिकी कलीसियाओं का समर्थन किया है। 6 जनवरी को हुए हमले में 5 लोगों की मौत हो गई है। एक बयान में अमेरिका के लिए कलीसियाओं की समिति के महासचिव एवं अध्यक्ष जिम विंकलर ने भीड़ के हमले को बेरहम, अस्वीकार्य, शर्मनाक और अपमानजनक कहा है। उन्होंने कहा है, तत्काल व्यवस्था बहाल करने के लिए कानून प्रवर्तन द्वारा हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया है और साथ ही जिन्होंने इस हिंसा को प्रेरित किया है उन्हें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए। अमेरिका की कलीसियाओं को प्रेषित पत्र में WCC अंतरिम महासचिव ने भी हमले पर खेद जताया है। प्रोफेसर डॉक्टर लेओन साउका ने लिखा है, हमने ऐसे दृश्य देखे जिसकी हम में से कुछ ने कभी न कभी देखने की उम्मीद की थी। दुर्भाग्य से जब विभाजन, टकराव, बदनामी और गलत सूचना राजनीतिक भाषण के प्राथमिक तरीके बन जाते हैं और गलत जानकारी राजनीतिक भाषण का पहला तरीका बन जाता है, जब जनहित सत्ता का पीछा करने के लिए राजनीतिक नेताओं का मुख्य उद्देश्य बन जाता है, तो ऐसा या इससे भी बदतर परिणाम होना अपरिहार्य है। माननीय सौका ने गौर किया कि कलीसियाओं की विश्व परिषद ख्रिस्ती साक्ष्यों से प्रेरित है, जिसको अमेरिका के कई कलीसियाई धर्मगुरुओं ने शांति के लिए, न्याय के लिए तथा जातिवाद के खिलाफ ईश्वर प्रदत्त मानव प्रतिष्ठा और सभी लोगों के अधिकार के लिए दिया है। ऑस्ट्रिया की एक पत्रिका ने साल 2020 में संकट के बीच दुनिया को प्रभावित करने वाले 100 लोगों की सूची में भारत की एक कार्तिक धर्म बहन को सूचीबद्ध किया है। OOOM ने माहिर की संस्थापिका एवं निदेशिका सिस्टर लूसी कुरियन को उन 100 लोगों की सूची में 12वें स्थान पर रखा है जिन्होंने साल 2020 में दुनिया को अपना विशेष योगदान दिया। सूची में संत पापा फ्रांसिस एवं दलाई लामा के नाम भी सूचीबद्ध हैं। पत्रिका में कहा गया है कि 2020 एक ऐसा साल रहा जैसा किसी ने उम्मीद नहीं किया था। पत्रिका ने भारत की सड़कों पर हजारों बच्चों और गरीबों के लिए माहिर संस्था की स्थापना करने वाली सिस्टर कुरियन को एक नायिका कहा है। सिस्टर कुरियन होली क्रॉस ऑफ चावानोट की सदस्य हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी में जी रहे लोगों के लिए आश्रम का निर्माण किया है। उनका मानना है कि जाति और धर्म पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों को बचाना ख्रिस्त के द्वारा मनुष्यों के लिए ईश्वर के प्रेम को दर्शाने का उत्तम रास्ता है। उधर कोलकाता के बंडल स्थित माता मरियम तीर्थस्थल में 10 जनवरी को बड़ी भक्ति के साथ तीर्थयात्रा की गई। कोविड-19 महामारी के कारण परंपरागत रूप से विश्वासियों द्वारा तीर्थयात्रा नहीं की जा सकी। इसके स्थान पर माता मरियम की प्रतिमा को कार द्वारा हावड़ा पल्ली से कोबरा लिया गया, जहां रोजड़ी की गई एवं ख्रिस्त त्याग अर्पित किया गया। कार्यक्रमों का संचालन कोलकाता महाधर्म प्रांत के विकर जनरल फादर डोमिनिक गोम्स ने किया। सामान्यतः बंडल में तीर्थयात्रियों की संख्या हजारों में होती है, जो करीब 40 किलोमीटर की दूरी से खाली पांव चलते हुए तीर्थस्थल की ओर बढ़ते हैं, जो भक्ति एवं कृपा का चिन्ह होता है। यह तीर्थयात्रा हर साल जनवरी के दूसरे सप्ताह में की जाती है, जिसकी स्थापना करीब 60 सालों पहले हुई थी। इसका आयोजन बंगाल के कैथोलिक संघ के द्वारा किया जाता है। और इसी के साथ हिंदी प्रसारण समाप्त हुआ, अब तमिल में प्रसारण होंगे। नमस्कार।